हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 33। इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण एवं ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए एकाग्र मन और भौतिक आसक्ति से रहित बुद्धि से हम गुरु और गौरंग से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सह गणरघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासीन दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवि प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अष्टदशो अध्याय उपसंहार श्लोक नंबर 33। कृपया मेरे साथ इन पवित्र शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कह रहे हैं, वृत्यायया भारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारेया धृतिः सा पार्थ सात्विकी। कैसे? धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारेया धृतिः सा पार्थ सात्विकी। फिर से धृत्यायया भारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। लास्ट धृत्यायया धारयति मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। शब्दों का अर्थ देखेंगे। धृत्या मना संकल्प डिटर्मिनेशन। धृति ऐसी चीज होती है जैसे हम बुद्धि से कोई निर्णय लेते हैं ना, उसके बाद संकल्प होता है हमारा कि मुझे वो करना है। बुद्धि डिसीजन लेती है और धृति होती है संकल्प। और वो कौन सा संकल्प है? यया धारयते। धारयते मतलब धारण करता है। किसको? मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन और प्राण और इंद्रिय, ये तीन चीजों की क्रियाओं को धारण करके धृति जो है वो दृढ़ संकल्प बनता है। आगे क्रिया मना क्रिया कार्यकलाप। किस किस के कार्यकलापों को धारण करना पड़ता है? मन के, जो मन ने सोचा है, प्राण के, जो हम मतलब जो प्राण हमारे हैं उनसे, उनकी वजह से जो हमने डिसीजन लिया है बुद्धि से, और इंद्रिय मना शरीर के जो ये इंद्रिय है ना, उनकी वजह से जो मैंने अभी बुद्धि से जो डिसीजन लिया है, और क्रिया और अपने कार्यकलापों से। अब इन सब से मिलकर जो हमारा डिटर्मिनेशन बनता है ना, संकल्प बनता है, उसको बोलते हैं धृत्यायाधारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना। योगेना कैसे बनता है? योगेना मतलब योग अभ्यास से मिलने, योग जब भगवान के साथ योग होता है। अव्यभिचारणा, अव्यभिचारणा का मतलब होता है जिसने कभी भी व्यभिचार नहीं होगा, टूटेगा नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं होगा, एक ही योग भगवान के साथ मिला हुआ होगा। और फिर जो संकल्प होगा धृति ही सा पार्थ सात्विकी, ऐसा संकल्प जो आप लोगे वो सात्विकी संकल्प होगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? धृत्या यया धारयते, जिस धृति के द्वारा धारण करता है, क्या धारण करता है? मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रिय, इन सब की जो क्रिया है उसको नियंत्रित करता है वह संकल्प, जो आपके मन के, आपके प्राण के, आपके इंद्रियों की क्रियाओं को, उनके सारे एक्शंस को नियंत्रित जो करता है, जो धृति संकल्प करता है। और किस तरह से करता है भगवान अगली लाइन में बताते हैं। योगेना, योगेना का मतलब होता है भगवान के साथ योग जोड़ के, भगवान के साथ जुड़ के। और कैसा जोड़ना है? अव्यभिचारणा, उसमें हिचकिचाता नहीं है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करता, कंटिन्यूस भगवान के साथ योग उसका लगा हुआ होता है और अपनी मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आगे भगवान कहते हैं धृति ही सा पार्थ सात्विकी। वह धृति कौन सी है? सात्विकी धृति के बारे में आज हमें भगवान बता रहे हैं। जैसे हम भगवान की भक्ति के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। जैसे निर्जला एकादशी आती है तो उसमें हमें उपवास रखना पड़ता है। उपवास के लिए पहले बुद्धि ये डिसीजन ले लेती है कि हमें ये उपवास करना है, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए संकल्प हमें बनाए रखना है कि नहीं, ये मुझे करना है, करना है, एनी हाउ करना है। इसी तरह से देखो, हम रोज होता है मंगल आरती पर हमें उठना है, ये हमारा कर्तव्य है। जब हम भक्त हैं, हमने दीक्षा ली हुई है, हमारी बुद्धि इस बात को एक्सेप्ट भी करती है, डिसीजन भी ले लेती है कि हम सुबह को उठेंगे, लेकिन ये जो दृढ़ संकल्प है ना कि भगवान के साथ योग जोड़ के हमें उसको कंप्लीट करना है, वो संकल्प अगर ढीला पड़ जाता है तो हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। उसी तरह देखो 16 माला जप है, सबको पता है कि 16 माला जप हमें करने हैं और सोचते भी हैं कि मुझे करने हैं करने, लेकिन क्योंकि संकल्प, दृढ़ संकल्प हमारा सात्विक योग के साथ अपने मन और प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम वो कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो दृढ़ संकल्प के द्वारा यदि हम अपनी इंद्रियों को के कार्य को, अपने मन के कार्य को उसको नियंत्रित करते हैं कि नहीं मुझे इंद्रियों को इस तरह से चलाना है, अपने मन को इस तरह से काम करने के लिए परमिशन देनी है, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करने देना है, वह दृढ़ संकल्प भगवान कहते हैं। भृत्या यया धारयति मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारेण जिति सापाकल सात्विकी, वह दृढ़ सात्विकी। अब जो दूसरे लोग होते हैं जो योग नहीं करते हैं, योगे ना यहाँ पर लिखा हुआ है ना, योग यानी कि भगवान के साथ जोड़कर जो अपने अंदर के जगत, कौन कौन से मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है वो सात्विक ही होता है। अब जो योग के जरिए मन प्राण और इंद्रियों का नियंत्रण नहीं करते, बाहर कुछ लोग ऐसे भौतिकतावादी होते हैं वो भी नियंत्रण करते हैं, उनके अंदर भी दृढ़ संकल्प होता है लेकिन वो बाहर की क्रियाओं को नियंत्रण कर रहे होते हैं, और लेकिन अपने अंदर प्राण मन की क्रियाओं को नियंत्रण करना जो है वो ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि वो हम अपने आप के साथ जो है ना युद्ध कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे, मेरे मन को कुछ और चाहिए होता है, मेरी इंद्रियों को कुछ और चाहिए होता है, लेकिन मेरा संकल्प इतना दृढ़ होता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। जैसे कोई राजा होता है वो पूरे देश को नियंत्रण कर रहा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, महाराज कहा जाता है। उसी तरह जो गोस्वामी होते हैं, गोस्वामी होते हैं वो भी अपनी, वो अपने अंदर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उनको भी महाराज ही बोलते हैं। और वो कैसे करते हैं, योगेना व्यभिचारेण, योग के जरिए से अपने मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, अपने मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ऐसा नहीं है कि किस कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास धृति ना हो, जिसके पास दृढ़ संकल्प ना हो। दृढ़ संकल्प या धृति इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन, वो सब लोग के पास है क्योंकि हम सब आत्मा है और हम सब के अंदर ये शक्ति है, लेकिन हर किसी का लेवल अलग है। जैसे जैसे हम लोग निर्जला एकादशी रखते हैं, ठीक है, उस टाइम पर सब हम सब ने जितने भी लोग होते हैं उन्होंने ये डिटर्मिनेशन किया होता है, बुद्धि लगाई होती है कि मुझे करना है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है और फिर इवनिंग हो जाती है तो फिर क्या लगता है, नहीं भाई अब मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है, मुझे अब पानी पी लेना चाहिए, मुझे अब कुछ खा लेना चाहिए, यानी कि तो क्या होता है जैसे इच्छा परिवर्तित हो गई, इच्छा दृढ़ संकल्प का मतलब होता है इच्छा, इच्छा तो सबके पास होती है लेकिन इच्छाओं को योगेना व्यभिचारेण अगर हटाना नहीं है, एक ही जगह पर टिकाए रखेंगे ना, इच्छा को बदलेंगे नहीं तो वो धृति सात्विक की होती है, लेकिन जैसे इच्छा चेंज हो गई उसी टाइम पर हमारे हमारा जो दृढ़ संकल्प है वो टूटने लगता है, वो कमजोर होने लगता है। पर इच्छा करने की शक्ति तो सब में है ना, इसीलिए अगर हम एक ही इच्छा को बरकरार रखते हैं, उसको ढगमगाने नहीं देते हैं तो वो दृढ़ संकल्प सात्विक है। तो डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ति या दृढ़ संकल्प जो है कोई मिस्टीरियस यानी कोई रहस्यमय चीज नहीं है। डिटर्मिनेशन इज सिंपली फोकस एंड परसिस्टेंट डिजायर। इस चीज को भगवान श्री कृष्ण सेकंड चैप्टर के श्लोक नंबर 41 में बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनंताश बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, यानी कि उनका संकल्प एकदम दृढ़ होता है और उनका लक्ष्य भी एक होता है। जब आपका संकल्प एक हो, क्या संकल्प हो कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, बस एक ही संकल्प है और उसका लक्ष्य एक ही है, एकेह कुरु नंदना यानी कि वो व्यभिचारी, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ना अव्यभिचारी, तो ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, उनका एक ही इरादा होता है, उनका प्रयोजन एक ही होता है, उनका डिटर्मिनेशन एक होता है, उनका लक्ष्य एक ही होता है। और आगे भगवान ने कहा बहुशाखा यनंताश, जिनकी बुद्धि बहुत ही शाखाओं में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं, यानी जिनका डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादा नहीं होता है, जिनकी वृत्ति पुख्ता नहीं होती है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभिन्न होती है। फिर उनकी इच्छा भी बदलती रहती है, कभी बोलेंगे ये करना है, कभी बोलेंगे ये करना है। अपने आप को एक जगह पे योग नहीं कर सकते भगवान के साथ, क्योंकि जो योग नहीं है तो एक चीज में टिक नहीं सकते। मतलब उनकी श्रद्धा इतनी कच्ची होती है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग तात्पर्य में देखेंगे 41 के, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। बस आपके अंदर एक ही सोच है कि यदि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, यदि कृष्ण के साथ मेरा योग जुड़ा हुआ है, यदि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य कर रहा हूँ, तो जीवन की परम सिद्धि मुझे इसी से प्राप्त होगी। चैतन्य महाप्रभु 22.62 में कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है। ये है दृढ़ संकल्प, ये है सात्विकी बुद्धि, यह है सात्विकी धृति। एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए कि मेरा कल्याण यदि होना है तो केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करके, केवल और केवल भगवान की भक्ति करके ही पॉसिबल है, इसके अतिरिक्त और किसी कार्य में नहीं। और इसी यही सोच कर यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह सात्विकी धृति है। अब ये कैसे होता है, हमारी धृति को दृढ़ संकल्प कैसे मिलता है, इतना सात्विक या फिर कोई भी संकल्प कैसे मिलता है? जब हम जिस भी चीज के बारे में विचार करते हैं ना, जिस भी चीज के बारे में विचार करते हैं उस चीज को शक्ति मिलती है और हमारा दृढ़ संकल्प उसी के लिए हो जाता है। जैसे अगर आप कोई चीज छोड़ना चाहते हो, किसी भी चीज के बारे में सोचोगे कि मुझे ये चीज छोड़नी है, मुझे छोड़नी है, मुझे छोड़नी है, तो आप उसके बारे में विचार कर रहे हो ना, तो जितना आप उसके बारे में विचार करोगे वो छोड़ने की मदी में और भी आपको पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि उसको पावर मिल रहा है, उसको आपकी इंटेंशन मिल रही है। और जैसे जैसे आप उसके बारे में सोचते जाओगे ना कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, उस चीज को आकर्षण मिल रहा है आपका। और जैसे जैसे आपने उस चीज को आकर्षण किया तो फिर क्या होगा, और भी उसके लिए उसको पावर मिल गया आपको पकड़ने। जैसे क्या होता है, वॉट एवर कैचेस अवर अटेंशन कैचेस अस, यह एक मानसिक तत्व है ना, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि जो आपके ध्यान को पकड़ लेता है वो आपको भी पकड़ लेता है। जिसके बारे में आप विचार करने लगते हो वही कार्य आप करने लगते हो। अगर मैं नकारात्मक यानी नेगेटिव वेव से सोचने लगूंगा ना कि ये मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसे करते करते उस चीज को इतनी आपकी इतनी इंटेंशन मिल रही है कि वही चीज आप करने लगते हो। तो जैसे हम करते जाएंगे ना 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 ना, तो मन ऐसा अंदर से जादू कर देगा कि वही चीज है ना, हाँ हाँ हाँ, मतलब अंदर से ऐसा होगा कि नहीं, उसी चीज को हमने फोकस किया हुआ है तो हमको वही चीज करने का मन कर रहा होता। तो जब दृढ़ संकल्प करना है तो नकारात्मक पर नहीं जोर देना है बल्कि सकारात्मक पर, यानी नेगेटिव पर मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, इसको नहीं देखना है, मुझे क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जब हम वो उस तरफ हमारा ध्यान होगा ना कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो चीज याद ही नहीं आएगी कि जो छोड़ना है, वो खुद ब खुद छूटता जाएगा। हमको याद ही नहीं आएगा कि वो काम भी मुझे छोड़ना था, खुद ब खुद छूट गया। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज हृदय से, मन से, इंद्रिय से, प्राण से एकदम खत्म हो जाएगी। तो सकारात्मक पॉजिटिव वे में कि मुझे करना क्या है, वो होता है शुद्ध सात्विक दृढ़ संकल्प। जैसे अगर हम लोग को कोई चीज मतलब फिजूल चीज छोड़नी है तो हम लोग उसकी तरफ नहीं देखें, हमें ये सोचना है कि मुझे आज ज्यादा से ज्यादा ये पूरा चैप्टर आज मुझे खत्म करना है, आज मुझे ना 32 माला करनी है, मैं माला बैठ के करूंगा, आज आज मुझे भगवान के लिए ये सेवा करनी है, कोई दूसरी सेवा करनी है, ये चीज बनानी है भगवान के लिए, गजरे बनाने, हार बनाने। तो जब हम उसकी तरफ, हमारा इंटेंशन पूरा उसकी तरफ होगा कि मुझे क्या करना है, तो पूरा का पूरा वही कर रहे होंगे कि मुझे आज क्या करना है, तो वो याद ही नहीं आएगा कि जो मुझे नहीं करना है। तो सारा का सारा धृति जो है वो सात्विक हो जाएगी, आपका संकल्प सात्विक हो गया तो आपके कार्य स्वयं सात्विक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं धृत्या यया धारयते मन प्राण इंद्रिय क्रिया, आपको संकल्प करना है और मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को नियंत्रण करना है कैसे, योगेना, योग के साथ उसको जोड़ के आपको करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो जाते ही सबको ये नहीं बोला कि आपको नशा नहीं करना है, आपको गोश्त नहीं खाना है, आपको ये नहीं करना, बस बोलते थे आपको खाली महामंत्र जप करना है, महामंत्र का जप करना है, जप करना है, जप करना है और महामंत्र श्रवण करना है, आप जैसे भी हो रहो। उसके बाद करते 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 जब उन्होंने भगवान के नाम में इतना पावर है कि वो खुद ब खुद उनकी सारी बुरी चीजें छूटती गई। लेकिन अगर हम कभी कोई बुरी चीज को खाली छोड़ने पर ही फोकस करेंगे कि मुझे ये छोड़नी है, मुझे छोड़नी है, छोड़नी है, उसको कोई सकारात्मक सोच नहीं देंगे, कोई पॉजिटिव वेव नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा, वही चीज हमको कैच कर रही होती है, हम लोगों को वो भी पता नहीं चल रहा होता है और भी उसमें ज्यादा गिरते हुए जा रहे होते हैं। बैक टू गॉड हेड में एक ना आर्टिकल छपा था, एक माता जी थी, एक यूरोप की माता जी थी, उनको यूरोप में फिल्म इंडस्ट्रीज में हीरोइन बनना था। अब हीरोइन बनना था और उसकी एक बुरी आदत थी कि वो सिगरेट बहुत पीती थी। अब सिगरेट जो है वो जब पीती थी तो पब्लिक इमेज में बहुत मतलब खराब उसका इमेज बन रहा था, तो उसको ये छोड़ना था। जब भी सोचती थी कि मैं सिगरेट पीना छोड़ू, सिगरेट पीना छोड़ू, सिगरेट पीना छोड़ू, तो और भी उसको ज्यादा सिगरेट की लत हुई लगी हुई थी, तो फिर वो छोड़ नहीं पा रही थी। एक बार एरोप्लेन में आ रही थी तो एक भक्त के साथ उनकी भेंट हुई और भक्त जैसे अब साथ में बैठे थे काफी देर, तो फिर भक्त ने उन्हें बताया कि यदि आप भगवान के नाम का जप करते हो तो आपकी समस्त बुरी आदतें खुद ब खुद छूट जाती हैं। तो उसने कहा कि बुरी आदतें छूट जाती हैं, तो उसको ये याद आ रहा था कि मेरी भी ये बुरी आदत है, अगर ये नाम जप करने से ये बुरी आदत छूटती है तो फिर मैं नाम जप करना स्टार्ट करती हूँ। तो उसने क्या किया, उसके अंदर क्या था कि बस मुझे नाम के ना मुश्किल लग रहा था कि नहीं आज मुझे सिगरेट नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना, वो क्या सोचती थी कि अब मुझे जब भी सिगरेट पीने का मन करेगा सबसे पहले एक माला का जप करूंगी, सबसे माला जप करके फिर ही पीऊंगी, अभी मुझे सिगरेट पीना है तो उसके लिए खुद को पहले एक माला कर। तो एक एक माला करते 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 उसको माला में इतना रस आने लगा कि खुद ब खुद उसको मन ही नहीं किया, उसको याद ही नहीं आया कि मैंने ये माला इसलिए की थी कि मुझे बाद में सिगरेट पीना है। वो माला करते 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 भगवान का प्रेम उसके अंदर इतना आ गया कि वो याद ही नहीं रहता था और सिगरेट पीती नहीं थी, वो भूल जाती। तो इस तरह क्या होता था कि आप यदि सकारात्मक की तरफ सोचते हो और भगवान के नाम में इतना पावर है कि आपकी बुरी आदतों को, बुरी सोच को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सेतो दर्पण मार्जनम, आपके चित्त की समस्त गंदगी को साफ कर रहा है वो नाम अंदर जाके, तो भी बुरी आदत या बुरा कार्य करने की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहती। पाश्चात्य देश में जब गए थे श्री प्रभुपाद जी तो उनको ये खबर ही नहीं थी कि कृष्ण क्या है, मंत्र क्या है, जप क्या है, शास्त्र क्या है, बस उन्होंने शक्ति आजमा ली, मंत्र को आजमाया और फिर जैसे जैसे उनकी बुरी आदतें छूटती गई तो और भी तत्व ज्ञान की तरफ आकर्षित हुए और देख रहे थे कि आखिर ये मंत्र क्या है, इसमें इतना पावर कहाँ से आ रहा है, ये कौन है जिसका नाम है। ऐसे करते करते उनके हृदय में जो तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उसने उस जिज्ञासा ने, उस दृढ़ संकल्प ने, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव को हटाने की कोशिश नहीं की बल्कि सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए दृष्टि अपने यूज की, योग के साथ मन और प्राण की इंद्रियों को नियंत्रित किया तो उनको भक्ति में इतनी सक्सेस। तो जो नहीं करना है वो नहीं उस पर जोर नहीं देना, जो करना है ये करना है उस पर, और जब हम करते हैं दृढ़ संकल्प योग के द्वारा, भगवान के साथ जब हमारा योग जुड़ जाता है तो जो नहीं करना है वो खुद ब खुद छूट जाता है, हमें याद ही नहीं आता। भक्ति का क्या मतलब होता है, भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने मन को खाली कर दो, आपके पास कुछ भी सोचने के लिए नहीं हो, खाली भक्ति हो तो फिर आप है ना भक्ति कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बात कहते हैं चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 70 इतना सुंदर भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचलम्, यानी जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती हुई रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं की निरंतर प्रवाह हमें विचलित नहीं होता, यानी कि इच्छाएं तो आती रहती है ना। अब इच्छाओं को हम ये नहीं कह सकते नहीं आप इच्छा मेरे अंदर नहीं आओ, ये भौतिक इच्छाएं मेरे अंदर आई नहीं आई नहीं आई नहीं, वो नहीं। अब वो आ रही है तो आने दो भाई, वो आ रही है तो, लेकिन हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। देखो यहाँ पर भगवान ने क्या लिखा हुआ है, इसके ट्रांसलेशन में देखिए, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है, उसको ये नहीं देख रहा है कि मेरी ख्वाहिशें क्यों हो रही हैं, और जो सदैव स्थिर रहता है, उसका लक्ष्य स्थिर होना चाहिए, उसका दृढ़ संकल्प स्थिर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अब जब उसके ये याद रहेगा कि मुझे करना क्या है, तो जो काम इंद्रिय की इच्छाएं आ रही हैं तो उनको समय नहीं दे रहा है। और श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और जो सदैव स्थिर रहता है वह शांति प्राप्त करता है। स्थिर रहना है, दृढ़ संकल्प बनाए रखना है, तो शांति प्राप्त होगा। और आगे कहते हैं, वह नहीं जो इन इच्छाओं को तुष्टि करने के लिए चेष्टा करता है, या फिर उन इच्छाओं को विषय में सोचो कि उनको नहीं करना है नहीं करना है, या फिर उनको ही खुश करने के लिए सोचो, तो वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं करेगा। शांति क्या, जो आने दो उनकी तरफ अवॉइड इग्नोर करता रहेगा और अपने संकल्प की ओर खाली ध्यान देता रहेगा, वही शांति प्राप्त करता है। तो मन को खाली करना कठिन है, लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं बोला मन को खाली कर दो। भगवान क्या कहते हैं 8.7 में, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्धश। आपको बाकी अपने काम सारे करने हैं, युद्ध करना है, अपने जो भी नियत कर्म है वो उनको करना है, खाली क्या करना है, मुझे माम अनुस्मराना, यानी कि मुझे आपको स्मरण करना है और युद्ध करना। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन में मुझे सोचना है, बुद्धि से मेरे बारे में विचार करना है, मामे वैश्य से संशय, और इस तरह से तुम मेरे पास आओगे। यानी कि मन, आप अपने जो हो रहा है आपके साथ, जो वातावरण है उसके अनुसार जो हो रहा है हो रहा है, लेकिन आपको अपने मन और बुद्धि से मुझे सोचना है, मन में मुझे प्रेम करना है, बुद्धि से मेरे बारे में सोचना है, और कंटिन्यूस मेरा मुझे याद रखना है। बस ये अगर विधि हमें समझ में आ जाए ना, जो श्री प्रभुपाद ने बताया है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण नेवर फॉरगेट हिम। आपके अंदर कितनी भी कामनाएं आ रही हैं, कितनी भी इच्छाएं आ रही हैं, कुछ भी नकारात्मक हो रहा है, उसके साथ साथ आप कृष्ण को लेकर चल रहे हो, कृष्ण 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 को खुश करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, आपका संकल्प ये होना है, तो फिर आपको कोई भी नकारात्मक चीज जो है वो आपकी इस संकल्प के अंदर बाधा नहीं डाल सकती है। क्योंकि जब हम प्रेम में लगते हैं, जब भक्ति में लगते हैं, जब भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो संपूर्ण आसक्ति दुनिया के साथ जो अटैचमेंट है वो खुद ब खुद निकल जाती है। आज भगवान क्या बताएं, धृति कैसे करनी है, संकल्प कैसे करना है, मन प्राण और इंद्रियों को नियंत्रण करना है कैसे, योगेन। ये योगेन शब्द बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको जोड़ना है। भगवान ने ये नहीं कहा कि किसी चीज को आपको तोड़ना है, मेरे साथ अपनी बुद्धि को जोड़ दो और उसके बाद आप जो भी करना है करो। आपकी बुद्धि मेरे साथ लगी हुई है, आपका प्रेम मेरे साथ अटैचमेंट है, मन के साथ मेरा अटैचमेंट है, बाकी आपकी खुद ब खुद नकारात्मक सोचें खुद ब खुद खत्म होती जाएंगी। तो यदि हमारी चेतना भगवान के अंदर लगी हुई होती है तो भौतिक आसक्ति भौतिक इच्छाएं आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही होती है, लेकिन आती हैं, लेकिन वो हमें अटैक नहीं करती हैं, हम क्योंकि भक्ति में लगी हुई होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भौतिक आसक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम भक्ति के पथ से नीचे गिर जाते हैं, कोई ऐसी इच्छा हमारे हृदय में दबी हुई कभी ऐसे उड़ जाती है, क्योंकि वासना खत्म नहीं हो सकती है। अब जब हमारा ये प्रकृति से बना हुआ जो शरीर है उसके अंदर ये सब है, तो उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पद से नीचे गिरते हैं, भक्ति के पद से। लेकिन अगर हमारा डिटर्मिनेशन ऐसा है कि नहीं मुझे कृष्ण योग बना हुआ है, तो क्या होगा, वी मे फॉल डाउन, हम भक्ति से नीचे तो गिर सकते हैं, बट वी हैव नॉट फॉल अवे, हम भगवान से भगवान की भक्ति से दूर नहीं होंगे। एक इस टाइम पर एक स्पाइक आ गया, समझो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कैसे स्पाइक आते हैं, पावर इतना तेज हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से भक्ति जीवन में भी कभी कभी हमारा पतन हो जाता है, लेकिन अगर पतन हो जाता है, हम ऐसा कोई निंदनीय कार्य कर भी बैठते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि अगर हमारा योग भगवान के साथ जुड़ा हुआ है तो ये पतन कंटिन्यूस नहीं रहने वाला, वो थोड़ी देर के लिए आया है वो अपना कार्य करके फिर वापस से हमारी बुद्धि जो है अगर भगवान के साथ लगी हुई है, योग बना हुआ है, तो फिर वो हम वापस से ट्रैक पे आ जाएंगे। मतलब उस टाइम जब मेरा पतन हो रहा था या जब मेरे अंदर वासना बढ़ गई थी, उस टाइम पर मैंने जो किया सो किया, वो तो टाइम पीरियड के लिए फॉल डाउन हुआ, लेकिन वो जब वो सिचुएशन जब हैंडल हो गई, उसके बाद में क्या कर रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद मैंने डिसीजन क्या लिया। कुछ लोग कहते हैं कि अब बस मेरा भक्ति में पतन हो गया, मैंने ये अपराध कर लिया, अब मैं वापस से भक्ति को ज्वाइन नहीं कर। नहीं, ये तरीका नहीं है। आपने एक कर्मों के अनुसार या फिर किसी भी भौतिक आकर्षण के अनुसार या माया के अनुसार आपसे ये अपराध हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप फॉल अवे हो जाओ, बस अब भक्ति करनी ही नहीं है। इस समय ये सोचना कि मैं इतना पतित हूँ, मैंने इतना अपराध किया है, मैं भक्ति करने के योग्य नहीं हूँ, मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना, ये नहीं है। स्पाइक आते रहेंगे भक्ति में, इस तरह से कभी कभी होता रहेगा कि हमारी भौतिक इच्छा हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, लेकिन इस स्पाइक्स के बीच में क्या हो रहा है, हम उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम अपनी बुद्धि को भगवान में लगा रहे हैं सेवा करने का, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता 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 ये इच्छाएं इतनी कम हो जाएंगी कि हम आएंगी नहीं, फिर हमारे मन में खाली भगवान की भक्ति का विचार ही आए। क्योंकि यदि हम भक्ति में गंभीर होंगे, अपने नाम का, शुद्ध नाम का, अच्छे तरीके से भगवान के नाम का जप करेंगे और सेवा में अपने मन को लगाएंगे, तो इतना ज्यादा हमें भौतिक आकर्षण इतना ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। क्योंकि भगवान का नाम साथ साथ में हमें शुद्ध भी तो कर रहा है ना, हमारे हृदय को शुद्ध कर रहा है, हमारे विचारों को शुद्ध कर रहा है, तो भौतिक आसक्ति जो है, अपराध की भावना जो है, वो शुद्ध हृदय में नहीं आती है। शुद्ध हृदय में तो कृष्ण भक्ति की भावना आती है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग इंटर हुए और अभी से हम लोग शुद्ध हो जाए और हमारे हृदय में कोई भौतिक इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी, आसक्ति। लेकिन डिटर्मिनेशन क्या है कि हमें अपना संकल्प दृढ़ रखना है कि नहीं, मुझे किसी भी तरह से भगवान को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उधर हमारा माइंड होगा तो नेगेटिव चीज में हमारा माइंड जाएगा ही। इसके लिए भक्ति में क्या करना है, सकारात्मक सोच। जैसे भगवान कहते हैं योगेना व्यभिचारेना अव्यभिचारेना, आपको कंटिन्यूस उसी ट्रैक पे चलना है। सोच आपकी यही होनी है कि मुझे भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। उसके लिए जो नकारात्मक आपके मन में आ रहा है उसको दूर भगाने के लिए ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद दूर होंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं योग परमात्मा को जानने का साधन है, यानी भगवान के साथ मिलाने का, भगवान को जानने का एक साधन क्या है, योग, भगवान के साथ अपना नाता जोड़ना। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, मन को, प्राण को, इंद्रियों को, इनको सेवा में लगाना है भगवान की, और एकाग्रता से दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहना है, वही कृष्ण भावनामृत में के तत्पर होता है। और यही कृष्ण भावना भक्ति क्या है, आपका मन, आपका प्राण, आपकी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगी हो, योग आपके साथ भगवान का जुड़ा हुआ हो, ऐसी वृत्ति सात्विक होती है। ये वृत्ति सात्विक है और यही जो सात्विक वृत्ति जो है वो शुद्ध सात्विक में जाती है, कि क्योंकि आप प्रेम करते हो भगवान के साथ तो शुद्ध सात्विक हो जाती है। अव्यभिचारिणिया शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। अव्यभिचारिणिया का मतलब बहुत ज्यादा श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हो, जब आप भगवान के साथ अपना योग जोड़ते हो, तो दूसरे कार्य हो रहे हैं उनकी तरफ आपका इतना आकर्षण नहीं है, इतना आप उनकी तरफ से विचलित नहीं हो रहे हो, बस अपना संकल्प दृढ़ बनाए रखना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है। इच्छाएं आती रहेंगी, लेकिन अपनी इस इच्छा को हमेशा सबसे ज्यादा प्रिफर करना है कि ये सबसे बड़ी मेरी इच्छा है कि मुझे कृष्ण को खुश करना है, तो दूसरी भौतिक इच्छाएं होंगी वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।